نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت نبی کے سلسلے میں اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. آخری چیز جس پہ ہم نے اپنی بات پوری کی تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائے جانے کی آفر, اور اس کے لیے دوسری بیعت عقبہ ہوئی جس کے اندر صحابہ میں سے تقریباً 73 کے قریب لوگ جو تھے وہ آئے, اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے وہ ساری شرائط جو کہ آپ نے اور آپ کے چچا عباس نے پیش کی اس کے مطابق اسلام کی مدد کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا یقین دلایا. پھر آپ نے 12 سردار مقرر کر دیے جس سے ہم سب کو سکھا دیا کہ جب بھی کسی گروہ میں دین کا کام ہوگا تو وہاں پھر لوگوں کو آرگنائز کر دینا چاہیے. ایک بڑے گروہ کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں جمع کر دیا جائے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے پیج 159 سے مسلمانوں کی ہجرت. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے کس شخص کو اللہ کے نبی نے بھیجا؟ مصعب بن عمیر کو, جن کا لگایا ہوا پودا اس طرح سے پھوٹا کہ ایک سال کے اندر ہی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہو گئی. ہر گھر میں ایمان کا بیج ڈل گیا. اور کچھ لوگ حقیقت میں اتنے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ خیر کی بوٹیاں ہیں, جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں خیر پھیلا جاتے ہیں. جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے, جو بھی ان کا راستہ ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کی وجہ سے خیر کا کام ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر واقعی انہی لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا درپردہ کہہ لیجئے یا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں. عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد اب مسلمانوں نے مدینہ سے ہجرت شروع کر دی. بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے, اور رسول اللہ کو بھی مسلمانوں کا دار الحجرہ دکھایا جا چکا تھا. کہاں دکھایا تھا؟ معراج کے موقع پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ نیکیوں میں پہل کر لیتے ہیں, کچھ اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں, کچھ حکم کے منتظر ہوتے ہیں, اور کچھ تو اس کے بعد اللہ کی بنا ڈانٹ کے منتظر ہوتے ہیں, اور کچھ کو تو ڈانٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. کبھی بھی زندگی میں نیکی کا کوئی موقع آئے, آج وہ ہجرت ہے کہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی نیکی کا موقع انسان کی زندگی میں آئے تو اس کے لیے انسان کو تڑپ رکھنی چاہیے کہ میں اول لوگوں میں سے ہو جاؤں. کچھ خود سے چلے گئے, یعنی اللہ کے نبی کو بتا کر گئے, لیکن انہوں نے کسی بہت زیادہ واضح حکم کا انتظار نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ پچھلے 20-25 سال سے ناروے میں سیٹ ہیں, اور اب صرف اور صرف دین کے فائدے کے لیے آپ کو ایسے یہاں سے نکلنا پڑے کہ آپ اپنے ہاتھ میں بھی جو چیزیں اٹھا کے جل سکتے ہیں یا گھوڑوں پہ لے جا سکتے ہیں وہی لے کے جا سکیں. یہ نہیں کہ یہاں کے ریپ اپ کریں, گھر بیچیں, پھر بینک ٹرانسفرز کریں اور پھر جائیں. یہ وہی کر سکے گا کہ جس کا دل اللہ کے لیے جمع ہو. اللہ کے نبی کو دار الحجرہ دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں. میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا ہجر ہے, لیکن وہ یثرب جو اس دور کا شہر تھا یعنی مدینہ النبی تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے تمہارا دار الحجرہ دکھایا گیا, وہ دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے. اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب ہے. آپ بتائیے کہ کیا کلیئر اشارہ نہیں آ سکتا تھا؟ جب جبرائیل جو آتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے کہ بھائی جائیے فوراً ادھر سے اتنے کلومیٹر اتنے مائلیج پہ ایک شہر ہے وہاں جا کے ہجرت کر لیں. لیکن یہ اشاروں سے بات بتانا یہ دین کا بڑا خوبصورت حصہ ہے, اس لیے کہ اگر بالکل نام لے کر مدینہ بتا دیا جاتا تو مسلمان تو مسلمان, نان مسلم بھی جو ہیں وہ بھی چل پڑیں گے, اور ان سب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. دوسری بات ہے کہ خود سوچو, اسلام کا مزاج جو ہے نا, یہ انگلی پکڑ کے چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ جب کوئی انگلی نہیں پکڑے گا نا تو پھر انسان چل نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ خود نبی کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اشارے دے دیتے تھے, تم سوچو کیا کرنا ہے, تم بتاؤ کدھر جانا چاہیے. بہرحال سب سے پہلا خوش قسمت جوڑا جو تھا وہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ تھی, ان کے بچے بھی تھے. یہ نکلے کہ ہم چلتے ہیں, قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. लेकिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस रंग में होती है कि जज्बाती अंदाज से जब सोचें, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी है तो रश्क भी इन पे आता है। बहुत दिलसोज़ वाक़या इनका। अभी थोड़ा सा दूर हुए, बीवी को उनकी कौम ने रोक लिया कि भई ये कहाँ लेके जा रहे हो, हमने इसलिए नहीं दी थी कि इसको दर बदर लेके फिरो। चल पड़े, बीवी छूट गई। थोड़ा आगे हुए तो बच्चे जो थे खुद अबू सलमा की माँ और उनके ख़ानदान ने उठा लिए कि भई ये हमारी नस्ल है, तुम कहाँ ले जा रहे हो। बच्चे दिदयाल में, बीवी मैके में और अबू सलमा तन्हा मदीने पहुंच गए। आप इस पे क्या कमेंट देंगे? आज के दौर का कोई होता कहते देखो ये है दीन, घर तुड़वा रहा है, ये है दीन, देखो ज़रा घरों में फूट पड़ रही है। एक तो अल्लाह माफ़ करे, हमने दीन को गूंगा बहरा इंसान समझकर अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर हादसे, हर नुकसान और हर तकलीफ़ का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि याद रखिए, जब भी इनकलाब आता है, रेवोल्यूशन आती है, लोग ख्वाहिशात की ज़िंदगी से उठाकर शऊर की ज़िंदगी पे लाए जाते हैं, तो इस तरह की हिजरतें होती हैं। ज़हनी हिजरत भी होगी, घरेलू हिजरत भी होगी। चले गए, अब हम कहते अच्छा ये कोई नेकी का काम है भला, चला गया अकेला मदीना में, बच्चे को कहीं छोड़ा, बैठे रहते, कर लेते, कनात करते। का नहीं, अल्लाह ने इनका नाम लिख दिया कि अव्वल मुहाजरीन में से। ये बैत अकबा से कोई 1 साल पहले का वाक्य है। 1 साल जब गुजर गया, कहते हैं कि उम्मे सलमा रोज़ उस मुकाम पे आके बैठ जाती थी जहाँ उनका शौहर और बच्चा जुदा हुआ। और ज़हरे के अबू सलमा को भी रास्ता लगा हुआ था, वो देखते थे निगाहें। 1 साल बाद खुद बीवी को उनके मैके वालों ही को, यानी समझ ले कि बीवी जो है उस पर तरस आ गया घर वालों को कि ये लड़की अधमुई हुई बैठी है शौहर के लिए, बच्चे के लिए, तो कहा चलो आओ हम छोड़ आते हैं। फिर इनके ख़ानदान को एक शख्स कोई गया और उनको छोड़ आया और वह अबू सलमा से मिल गई। आप देखिए कि हम थोड़ा सा स्टैंड तो लेके देखे दीन के लिए। बस सच्ची बात है कि हमारे घर वाले बुरे होते भी हैं दीन के एतबार से, कुछ हमने खुद भी उनको लाडला बना लिया, ऐसी हवा बना लिया उनको अपने लिए और अपने आप को बहुत ही एक दूसरे एज पे रखा है। ज़रा खड़े होके देखें, कोई कुछ नहीं होता। हम दुनिया के हर मामले में स्टैंड लेंगे, नहीं लेते तो दीन के लिए नहीं लेते। नहीं अब इसमें ना बोलो, नहीं फिर शौहर नाराज़ हो जाएंगे, फिर तलाक देंगे। जिन्होंने देनी होती है ना, वो फिर इस चीज़ का इंतज़ार कोई नहीं करते, और जिन्होंने इस बात पे तलाक देनी है तो समझ लीजिए कि वो तो फिर आपको अल्लाह ताला अभी से बता रहा है कि आपका आज से 10 साल बाद जो मामला होना है वो आज ही आपके लिए आसान है। तो इस्लाम क्या चाहता है कि इंसान समझदारी के साथ मामला करे। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते इस तरह ना हो जाए कि खुद को मजलूम और दूसरे को जालिम करता जाए, क्योंकि जब हम जुल्म सहते हैं तो दूसरा जालिम बनकर गुनाहगार भी तो हो रहा है ना। अबू सलमा के बाद आमिर बिन रबिया और उनकी बीवी लैला बिनते अबू हसमा और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ने हिजरत की। फिर बैत अकबा मुकम्मल हुई तो मुसलमानों ने पै दर पे हिजरत की। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हालात कितने तंग थे मक्का में, कि वो रहना पसंद ही नहीं कर रहे, अपनी लगी लगाई ज़मीनें, घर बार खेतियाँ सब छोड़ के वहाँ से निकल गए। ये लोग कुरैश के डर से चुपके चुपके निकलते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी हिजरत कर ली। फील करें, उमर जैसा शख्स जब हिजरत करेगा तो यकीनन फिर वो मक्का उस दौर में इस्लाम के तौर पर रहने वाला नहीं था। वो कुरैश को चैलेंज देते हुए बबांगे दोहल निकले, यानी बाकियों ने छुप के हिजरत की, उमर की हिजरत का फ़र्क क्या है, बता के गए कि जिसने रोकना है ख़त्ताब के बेटे को आके रोक लो। कहते हैं किसी को उनके सामने आने की जरूरत न हुई, 20 लोगों को साथ लेकर मदीना चले गए। अल्लाह आज भी ऐसा ही उमर वाला ईमान हमें दे दे। सब मुसलमानों ने मदीना हिजरत की, आम मुहाजरीन हबशा भी जो थे पहले जा चुके, जब उन्होंने सुना कि मदीना में अब हिजरत हो रही है, करीब ही था ना, फिर वो भी मदीना की तरफ आने लग गए। मक्का में कौन रह गया? अबू बकर, अली, सुहैब और जैद रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन रह गए, और फिर कुछ कमज़ोर मुसलमान जो हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। हज़रत अबू बकर का भी दिल था कि मैं हिजरत करूँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया थोड़ा रुके रहो, उम्मीद है कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। यहाँ से पता चलता है कि नबी को ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होती है किसी जगह को छोड़ने की। आप कुरान पाक में इंशाल्लाह किस्सा पढ़ेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जो मछली के पेट में चले गए थे, तो यहाँ बस इतना सा समझ लें कि हज़रत यूनुस को मछली के पेट में क्यों डाला गया, क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त से पहले ही हिजरत कर गए। तो अल्लाह ने कहा अच्छा आप कहाँ जाते हैं, हम आपको मछली के पेट में क़ैद कर देते हैं। तो अंबिया कराम के जहाँ मुकाम और दर्जे बुलंद होते हैं वहाँ उनके लिए पाबंदियाँ भी ज़्यादा होती हैं। हज़रत अबू बकर ने जब अल्लाह के नबी की ये बात सुनी तो कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आपको इसकी तवक्को है, यानी खुश हो गए कि अच्छा आपको भी हिजरत करनी है और फिर मैं आपके साथ करूँगा। आपने कहा हाँ। चुनाचे फिर अबू बकर नहीं गए ताकि अल्लाह के नबी को जब मौका मिले तो आपके साथ जाऊँ ताकि आप तन्हा ना जाए। इनके पास दो ऊँटनियाँ थीं, सफ़रे हिजरत के लिए बबूल के पत्ते खिला खिला कर उनको खूब तैयार कर रहे थे। आप देखिए कि जिन्होंने कोई काम करना होता है ना, वो पहले से तैयारियां शुरू हो जाते हैं। कुछ होते हैं काम पड़ जाए तो उनको बोझ बनता है, फिर मुरव्वत कभी कुछ कभी किसी नाते से काम कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हकीकत में ऐसे हैं कि जो वाकई अपने आप को हर जगह पहले से तैयार रख के बैठे होते हैं। अब और कुछ नहीं करना, अब कोई और काम नहीं। कुरान पाक में भी आता है, सूरह तौबा में आप पढ़ेंगे गज़वे तबू के ज़िमन में, कि जिनको तैयारी करनी होती है, जिनको कोई काम करना होता है, तो वो पहले से तैयारी करके रहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि मदीना की थोड़ी सी बात हम करेंगे। अल्लाह के नबी ने मक्का के बाद मदीना को क्यों चुना, कोई ख़ास उसकी वजह थी? चंद रिवायात आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आगे हमने देखना है कि अल्लाह के नबी भी हिजरत कर रहे हैं, लेकिन मदीना की क्या हैसियत थी। सही बुखारी की रिवायत है 1871, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे ऐसे शहर में हिजरत का हुक्म दिया गया जो दूसरे शहरों को खा लेगा, यानी सब का सरदार बनेगा। मुनाफिकीन इसे यसरब कहते हैं, लेकिन इसका नाम मदीना है। वो बुरे लोगों को इस तरह बाहर निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को बाहर निकाल देती है। क्योंकि मक्का से प्यार बहुत था अल्लाह के नबी को, सहाबा को, और जब हिजरत हुई बाद में उसको याद करके रोते थे, तो फिर अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी थी कि अल्लाह हमारे लिए जिस तरह मक्का को महबूब बनाया है, इस तरह मदीना को भी महबूब बना। तो यहाँ हदीस सुन ले, आपको सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी कि मदीना की क्या शान है। एक और रिवायत भी सही बुखारी में है, 4422 नंबर की, हज़रत अबू हुमैयत साइदी इसके रावी हैं, कहा कि अल्लाह के नबी के साथ हम गज़वे तबूक से वापस आए, जब मदीना के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, ये ताबा है। मदीना का एक और नाम क्या है? ताबा, तोए अलिफ बा हा। ये ओहद का पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। मदीना के बिल्कुल साथ ही ओहद का पहाड़ है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मदीना का नाम ताबा रखा है। ये सही मुस्लिम 3423 नंबर की रिवायत है। एक और रिवायत सही बुखारी की 1886 नंबर की, हज़रत अनस से, कि जब अल्लाह के नबी सफ़र से वापस होते और मदीना की दीवारों को देखते, जैसे आप दूर जाते हैं तो वापस आते हैं तो अपने शहर के आसार शुरू हो जाते हैं, तो अपनी सवारी को तेज़ चलाते, और अगर किसी दूसरे जानवर पर होते तो इसको मदीना की मोहब्बत के सबब एड़ लगा देते। एक एक्साइटमेंट होता है ना, अपना घर आ गया। हमेशा आप देखे कहीं से भी आए ना, तो किसी करीबी जगह पे तो आप कहते हैं बस अब लगता है घर आ गए हैं, हालांकि घर आने में भी टाइम होता है। और आपको शायद ये बात पता हो कि नहीं, कि हिजरत से पहले मदीना कोई अच्छी जगह नहीं थी, सबसे ज़्यादा वबाएं वहाँ फूटती थी। रिवायत है सही मुस्लिम की 3408 नंबर की, हज़रत आयशा इसकी रावियाँ हैं, कहती हैं कि हम मदीना आए तो वहाँ वबा थी, यानी जो बीमारियाँ एक दूसरे से लगती हैं, तो अबू बकर बिलाल रदी अल्लाह अन्हो दोनों जो थे ये बीमार हो गए। तो जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों की ये बीमारी देखी तो दुआ की, फरमाया, अल्लाह जैसा कि तूने हमारे लिए मक्का को महबूब बनाया था, मदीना को हमारे लिए इससे भी ज़्यादा महबूब बना दे, और मदीना को सेहत की जगह बना दे, और हमारे लिए मदीना के साह में और इनके मुद में बरकत अता फरमा, और मदीना के बुखार को जहफा की तरफ फेर दे। गोया के अल्लाह के नबी की दुआ से फिर मदीना जो है ये इन वबाओं से महफूज हो गया। सही बुखारी की रिवायत है 1885 नंबर की, कि अल्लाह मक्का में जो बरकत तूने रखी है, मदीना में इससे दुगनी बरकत अता फरमा। गोया के क्या पता चला कि मदीना भी ऐसी जगह है कि जहाँ जाने की ख्वाहिश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में पहला फल लाया जाता। देखिए ये भी एक अदब था उस दौर में, चूंकि फल आते ही सीजनल थे, अब तो सारा साल ही रहते हैं, लेकिन हुक्म क्या है कि जब भी कोई नया फल आए तो आप किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, यानी जिसको भी आप समझते हैं कि वो आपके लिए बाइज्जत है, उसको पेश करें, फिर आप उसको पकड़ते फरमाते, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे मदीना में और हमारे फलों में और हमारे मुद और साह में बरकत अता फरमा। फिर जो फल आपको दिया जाता वो बच्चों में सबसे छोटे बच्चे को खिलाते, फिर उसके बाद दूसरों को खिलाते। तो इस्लाम देखिए दीन ऑफ मैनर्स है। आज दिन ब दिन बदतमीजियाँ और डिसरिस्पेक्ट आम होती जा रही है दुनिया में। कोई है ये मैनर्स आज हमारे पास? घर में चीज़ बाद में आती है, बच्चों को अच्छी लगे वहीं से लिफाफों में पकड़ के कुतर रहे हैं, खा रहे हैं, आधी इधर है कुछ उधर है। यानी ऐसे लगता है कि अब हम अपने बच्चों के ऊपर गहरी नज़र नहीं रखते, इस तरह नहीं उनको पाल रहे कि उनको ज़रा छोटे बड़े की तमीज़ हो। बाज़ दफ़ा घर में दादी होती हैं, दादा होते हैं, कोई और भी बुज़ुर्ग हो सकते हैं घर के, तो हमेशा बच्चों को कहिए कि आप बड़ों को पहले मौका दें। बड़ों की तो आदत ही होती है, वो सबसे पहले बच्चों को देते हैं, लेकिन बहरहाल इससे ये पता चलता है कि नया फल आए तो उसको खाते हुए दुआ करते हैं। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि मदीना के दरवाज़ों पर फरिश्ते हैं, वहाँ ना तो ताऊन और ना दज्जाल दाखिल होगा। ये सही बुखारी की रिवायत 1880 है। तो देखिए कि अगर किसी को ताऊन से डर है, ताऊन पेट की बीमारी होती है जिस तरह डायरिया हो जाता है और एक ख़ास किस्म की गंदगी से ये फैलता है, तो मदीना में अल्लाह ताला ने ये बीमारी नहीं रखी। ताऊन और दज्जाल तो सबसे बड़ा फितना आने वाला है, उससे भी अल्लाह ने इस शहर वालों को बचाया है। फरमाया एक और रिवायत है 1879 नंबर, बुखारी ही की है, अबू बकरा इसके रावी हैं, कि मदीना में मसीह दज्जाल का रोब भी दाखिल नहीं होगा और इस ज़माने में मदीना के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर 2 फरिश्ते होंगे। अब आप ये सुनते हुए क्या दिल चाह रहा है, सारे मदीना चले जाएं। लेकिन अभी सुन लेंगे आप कि मदीना में हर बंदा नहीं रहता, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सिक्योरिटी है। आमिर बिन साद कहते हैं अपने बाप से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मदीना इनके लिए बेहतर है, काश के वो जान लें, और कोई मदीना को नहीं छोड़ता मगर अल्लाह ताला इससे बेहतर आदमी इसमें भेज देता है। और जो आदमी भी मदीना की भूख प्यास और मेहनत और मशक्क़त पर सब्र करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करूँगा और इसके हक़ में गवाही दूंगा। ये सही मुस्लिम की 3384 नंबर की रिवायत है। तो गोया कि क्या पता चला कि कभी को मदीना से निकलता है तो आने वाला उधर उससे बेहतर शख्स होगा। इब्ने उमर कहते हैं कि इनके एक लौंडी इनके पास आई और कहा मुझ पर वक्त बहुत सख्त हो गया है, मैं इराक जाने का इरादा रखती हूँ, यानी मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इब्ने उमर ने कहा तुम शाम की तरफ क्यों नहीं जाती जो हशर की जगह है, यानी क़यामत के दिन जो मैदान हशर है वो भी मुल्क शाम है। हमारे यहाँ तो मारूफ है ना अरफात का मैदान है, हालांकि ज़्यादा जो मजबूत रिवायतें मिलती हैं वो मुल्क शाम की हैं। अरे बेवकूफ़ सब्र कर, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि जिसने मदीना की सख्ती और तंगी पर सब्र किया मैं रोज़े क़यामत इसका गवाह या सिफारशी बनूंगा। तो गोया कि इससे भी पता चलता है मदीना में रहने की फ़ायदा, मदीना की मौत कैसी है। इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जो ये कर सके कि मदीना में फौत हो तो वो ऐसा ज़रूर करे, इसलिए कि मैं मदीना में फौत होने वालों के हक़ में गवाही दूंगा। ये इब्ने माजा 3112 नंबर की रिवायत है इब्ने उमर से। तो मदीना में मौत खुशकिस्मती की अलामत है। सही बुखारी की रिवायत 1890 है। हज़रत उमर दुआ किया करते थे ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत दे। मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इलामा एहसान लई ज़हीर साहब की बात ज़रूर याद आती है। वो ये दुआ पढ़ते थे तो मांगते भी थे, तो उनके घर वाले या जैसे करीबी लोग होते हैं ना तो वो बाज़ दफ़ा मजाक करते थे, कहते थे इलामा साहब एक तो आप जिहाद की या शहादत की दुआ मांग रहे हैं और दूसरी मदीना में, तो आपको तो पता है कि मदीना में तो जंग होती नहीं है, वहाँ जिहाद कैसे करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसे असबाब बनाए कि वो अपने शहर में थे और अल्लाह के दीन का पैगाम ही दे रहे थे। बम ब्लास्ट हुआ, किसी ने उनको फूल पेश किए जिसके अंदर बॉम्ब था और उसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए, उनकी टांग के ऊपर ज़ख्म था। सऊदी हुकूमत ने अपना तैयारा भेज कर उनको बुलवाया और बिल्कुल कुछ दिन तक यहाँ लाहौर के हॉस्पिटल में रहे, ठीक था, लेकिन उन्होंने ऑनरली कहा कि हम इनका इलाज करवाएंगे। और जब वो मदीना एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुँचाए गए तो वहाँ गए तो उनका दम निकल गया। तो फिर उनके घर वाले कहते थे कि आज हमें इनकी दुआ समझ आई है कि किस तरह अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनता भी है और उनके ऊपर फिर अल्लाह ताला उनकी बात को कर भी देता है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान मदीना की तरफ इस तरह सिमट कर आएगा जिस तरह सांप अपने बिल में सिमट आता है। सही बुखारी 1876 नंबर की रिवायत है। कैसे? आप देखिए कि बहुत फितने आने वाले हैं ना आगे, तो अब जो लोग सच्चे मोमिन होंगे ना, जिनके दिल में वाकई दुनिया और ये सारी इसकी चमक नहीं है, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि मदीना में चले जाए। क़यामत के करीब मदीना लोगों से भर जाएगा लेकिन सिर्फ ईमान वाले। लेकिन सारे ईमान वाले वहाँ नहीं मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दुनियावी फ़ायदों के लिए गए हैं, क़यामत से पहले जलजले आएंगे, दो तीन जलजले आएंगे मदीना में, उसके खौफ से मुनाफिक और दुनियादार किस्म के जो लोग हैं वो सब मदीना से निकल जाएंगे। जब वो निकलेंगे फिर दज्जाल आएगा, तो अल्लाह फिर ईमान वालों को बचाएगा। असल बात वही है, अपने दिल को खालिस कर लें। आप मक्का में रहें, मदीना में रहें, आप दुनिया के किसी कोने में रहें, आपका ईमान आपको बचा लेगा अल्लाह के हुक्म से। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने आपसे इस्लाम पर बैत की। इसके दूसरे दिन इस हाल में आया कि बुखार में मुबतला था। अब होने की बात ही हो गया बुखार, लेकिन कुछ तोहम परस्त होते हैं ना, वहमी लोग, जब से ये किया ये हो गया, जब से ये औरत घर में आई ये हो गया, जब से ये बहू आई ये हुआ, जैसे वहम ले लेते हैं। इसने भी आके कहा अल्लाह के नबी जी मेरी बैत तोड़ दीजिए, यानी मुझे इस्लाम रास नहीं आया। आपने 3 बार इनकार किया, क्या कर रहे हो, इस्लाम छोड़ रहे हो, 3 बार का। और फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह जो मैल कुचैल को दूर कर लेती है और खालिस को रख लेती है। यानी कहा कि अल्लाह के बंदे अगर बुखार आ भी गया तो अल्लाह तुझे पाक कर रहा है, क्या पता चला। यहाँ बहुत बड़ी बात है, ये तो मदीना के ज़िम्मन में हदीस है ना, लेकिन अमली ज़िंदगी में याद रखिए, किसी नेकी के काम को करना और फिर छोड़ देना, यह अपनी शामत को बुलाना है। कभी भी आपको दीन के किसी काम के बाद कोई तकलीफ़ आए, कोई आजमाइश आए, लोगों से हम सुनते रहते हैं ऐसी कहानियाँ, जब से ये किया ये हो गया, जब से ये किया ये किया, तो पहले मैं सोचती हूँ, कभी तो लोग कुरान का नाम भी ले लेते हैं, जब से क्लासेस में आने लगे ये हुआ है, तो मैं कहती हूँ आप ज़रा सोचिए आप कह क्या रहे हैं। नाउज़ बिल्ला, हम कुरान को मनहूस कहेंगे या इस्लाम ऐसा है। असल में अल्लाह हमें पाक करके देख रहा होता है कि इसके अंदर का मैल और जो खोट खपट है निकल जाए, फिर मैं इसके सीने को ईमान से भर दूँ। हम उस थोड़ी से दिनों की तब्दीली को बर्दाश्त ना करके अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लेते हैं। फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, सुन रहे हैं आपको मज़ा ही आ रहा है मेरा ख्याल है, हालांकि सीरत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बुक है बड़ी खूबसूरत, आप बाद में भी इधर देखिएगा, अटलस सीरत नबी। तो इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से सीरत में जितनी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनके तस्वीरें और मैप्स बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन मदीना की कहानियाँ थोड़ी सुनते जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है 3418 नंबर की, अबू हुरैरा से, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी अपने चचाजाद भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाकर कहेंगे कि जिस जगह आसानी और सहूलत तो इस जगह कूच कर जाओ। यानी जैसे लोग आज शायद इसको नॉर्वे पे ले लें, कि चचाजाद भाइयों को सबको नॉर्वे बुला लेंगे कि इधर आ जाओ, इधर बड़ी सहूलतें हैं, और मदीना इनके लिए बेहतर है। काश के वो लोग जान लें, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह वहाँ से किसी को नहीं निकालेगा सिवाय इसके जो वहाँ से एराज़ करे, तो अल्लाह इसकी जगह वहाँ इसे आबाद फरमाएंगे जो इससे बेहतर होगा। आगाह रहो कि मदीना एक भट्टी है जो खबीस चीज़ यानी मैल कुचैल को बाहर निकाल देती है, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मदीना अपने में से शरीर लोगों को बाहर निकाल फेंकेगा, जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को बाहर निकाल देती है। ये सही मुस्लिम की रिवायत 3418 है। देखिए जितनी भी रिवायतें आपसे शेयर करी ना, ये बुखारी या मुस्लिम की है, आपको अब ये याद रखनी है कैसे। बुखारी खोलिए और वहाँ से पूरा बाब है मनाकिबु मदीना या फ़ज़ाइलुल मदीना, बुखारी का पूरा टॉपिक पढ़ लें, मुस्लिम का पढ़ लें, ये सारी हदीसें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह उसमें। फिर इसी तरह और भी रिवायतें हैं, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि एक मोमिन के दिल में मक्का और मदीना की मोहब्बत होनी चाहिए, इसके साथ इंसान का ईमान है। आज हम बाज़ दफ़ा दुनिया के दूसरे कोनों में पहुँच जाते हैं लेकिन हज और उमरा नसीब नहीं होता, बड़ी बदबख्ती की अलामत है, बहुत ही बदबख्ती की अलामत है कि अगर एक इंसान इस तरह खुशहाल भी है और अभी तक उसने हज नहीं किया। और जिस तरह मक्का से मोहब्बत है, इस तरह इंसान को मदीना से भी मोहब्बत होनी चाहिए। जैद बिन साबित से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ओहद की तरफ रवाना हुए तो कुछ लोग जो आपके साथ थे यानी मुनाफिकीन थे, वो बहाने बनाकर वापस लौट गए, तो सहाबा के दो गिरोह हो गए इनके बारे में। कुछ ने कहा दुश्मन को तो छोड़ो, पहले इनसे जाके जिहाद करते हैं, ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथ आने वाले लोगों की तरफ इशारा है। बाज़ ने कहा नहीं, हम इनसे जंग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मुसलमान ही है ना बिलाहर। तो इस पर वो आयत नाजिल हो गई कि फ़मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों के बारे में तुम्हारी दो जमातें हो गई हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इनके बुरे आमाल की वजह से इनको कुफर की तरफ लौटा दिया, सूरह निसा की आयत 88 है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मदीना तैबा है, तैबा तैयब से पाक, यानी बुरे लोगों को अपने से इस तरह दूर कर देता है जैसे आग चांदी के मैल को दूर कर देती है। ये सही बुखारी 4050 नंबर की रिवायत है। حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جیسے خانہ کعبہ حرم ہے نا، اسی طرح مدینہ میں مسجد نبوی بھی حرم ہے. تو جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدعت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا، تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن نہ اس سے کوئی فرض اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا. دیکھیے یہ مسلم کی روایت ہے 3396 نمبر کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدعات اور دین میں نت نئے کام کرنے والے جو ہیں ان کی باقی عبادات کو بھی قبولیت کے درجے سے ہٹا لیا جاتا ہے. فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف میں مبتلا کرے گا اللہ اسے خوف میں مبتلا کر دے گا. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2304 نمبر کی. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسا کہ سیسا پگھلتا ہے، یا فرمایا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. صحیح مسلم 3385 نمبر کی روایت ہے. گویا کہ اگر کبھی کسی دشمن نے خدا نخواستہ مکہ یا مدینہ کی طرف حملہ کیا تو اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے دوچار کرے گا. آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ تو مدینہ کے کانٹے دار درختوں کو کاٹا جائے اور نہ ہی مدینہ کے شکار کو قتل کیا جائے. جیسے حرم کی حد میں مکہ میں شکار منع ہے، اس طرح مدینہ میں بھی ایک حد ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسجد نبوی اب دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ اس حدوں کے اندر تک آ رہی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح سے کچھ اور روایات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اسلام کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی محبت پیدا کر دے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ہم جو مسلمان ویسٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، کبھی فارغ بیٹھ کے سوچیں، ایک مقصد ہے صرف آپ کا ان ملکوں میں رہنے کا، کیا آپ اپنے وجود، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی تبلیغ، اپنی دعوت سے دوسروں کو اسلام دکھائیں. یہ اونلی ریزن ہے، ون اس کے اینگل ہے. دعویٰ کر لیں، تبلیغ کر لیں، مسلمان بتائیں، یا اپنے اسلام کو وہاں لاگو کریں، خود اپنے اسکولوں میں بچوں سے اسلامی چیزیں وہاں منوائیں، کرتے جائیں کرتے جائیں. اونلی ریزن ہے، اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں جانتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت ساری تکلیفوں کا شکار ہیں. آج بھی ہمارے ملکوں میں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں ادھر اتنی بیماریاں، اور یہ کھانے پینے جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان کے نصیب میں ہیں بیچاروں کے، جو ہمارے نرم گدے اور کمفورٹر اور گرمیوں کے پلو اور سردیوں کے پلو اور یہ کمفورٹر، یہ ان غریبوں کو نصیب ہے. لاکھ برے ہوں گے، وہ نہیں پڑھتے پاکستانی نماز، جھوٹ بھی ہے، دھوکا بھی، کہتے رہے اب سب کچھ، لیکن یاد رکھیے کہ اپنی چوائس سے دار الکفر میں رہنا اور اسلام نہ ظاہر کرنا، یہ ہے آج مسلمانوں کی 1001 تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ. اور اللہ شکر کرے دنیا میں پاک کر رہا ہے، ورنہ پتہ نہیں حال کیا ہو جائے ہمارا، ہم تو کروٹ نہ بدل سکے. تو ہمیشہ بیماری تکلیف پہ سوچئے کہ جرم کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کی سرا کیا ہے. تو اگر تو کوئی ان ملکوں میں رہ کے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، نمائندہ بنتا ہے، ہزار دفعہ رہے، بلکہ رہنا چاہیے. آج عموماً ایک خیال ہے نا ہمارے لوگوں میں کہ جی باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں پھر وہ ماڈرن بن جاتے ہیں، پڑھے لکھے دولت کمانے والے ہیں. یعنی مین آپ کہہ لیں کہ دنیا دار لوگوں کا دل باہر کے ملکوں میں لگتا ہے یا جانے کی طلب ہے، جو اپنے ملک میں لیکن پاؤں اچھال رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ پہنچ جائے. اور جو بھی نیکی کی روش رکھنے والے بزرگ اور دین کو سمجھنے والے، ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے. کہانی بالکل اپوزٹ ہونی چاہیے، جو میری سمجھ ہے چھوٹی سی، کہ جو جتنا سچا دین کا دائی ہے نا، جس کے دل میں دین جڑیں پکڑ چکا ہے کہ بس انشاءاللہ اللہ نہ ہٹائے تب مجھے کوئی دنیا کی طاقت اسلام اور دین پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتی، ان سب کو موو کر جانا چاہیے ویسٹرن کنٹریز میں. اور ہم جیسے ڈلو ڈھچکے ہیں نا، جو سارے کسی طرح ویزے لگوائیں، کوشش کریں، دعائیں کریں، مکہ یا مدینہ پہنچ جائیں، بہت پہنچنا ہے. تو ان کو جا کے کہ ہمیں ہمارے ایمان کا بڑا خطرہ ہے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہم خود پتہ نہیں کتنے قرضوں میں جکڑے، کتنے ہم سود میں پڑے ہوئے، خدا کے لیے ہمیں ویزے دو، ہم مدینہ کے مکہ کے ارد گرد کی ویران جگہوں کو آباد کر لیں گے، وہاں بہت بڑے ویرانے ہیں، سارا اپنا پیسہ لے جائیے باہر. ایک ایسی لکھ کے دے دیں گورنمنٹ کو کہ ہم اپنا سارا پیسہ لے کے آتے ہیں، ہمیں بس اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مکہ مدینہ کے بیچ میں رہ لیں. پھر جب ہمارا وہاں رہ کے اگر اسلام سے کوئی قرب اور محبت اور علم کی بات ہے، پھر آ جائیے گا واپس. لیکن بغیر علم اور بغیر دین کے اوپر عمل کے ان ملکوں میں رہنا، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपके साथ ही इधर हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सारे निकल जाए तो मैं भी निकलने को तैयार हूँ। और अल्लाह जानता है जिन जगहों को लोग एक देखने और वहाँ रहने के शौक में उछलते हैं, हमें तो कभी उसका ख्याल ही नहीं आता। देखते हैं जहाँ भी जाते हैं, कहीं किसी मुल्क में जाएं, शहर में लोग दिखाते हैं ये यहाँ की मशहूर जगह है, तो मैं हंसती हूँ, देखती हूँ कि अच्छा देख, एक दफ़ा तो देख लेते हैं हम भी, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, उससे इबरत और वहाँ से भी अच्छी बात सीख के आते हैं, लेकिन वो क्रेव नहीं है। यही फिक्र होता है, या मस्जिदें कितनी हैं, या मुसलमान किधर हैं, कितने हैं। तो अपने इस्लाम का इजहार बहरहाल लाजमी है। एक आखिरी रिवायत पेश करके फिर आगे चलती हूँ। हज़रत अनस से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि बनू सलमा ने मस्जिद नबी के करीब मुंतकिल होना चाहा। थोड़ा दूर था ये कबीला, पैदल चल के आना इनको मुश्किल लगता था, तो इनको लगा कि हमारी नमाज जमात की जब वो छुटती है या ज़रा मुश्किल होती है तो हम करीब आते हैं। अब नीयत क्या थी कि मस्जिद के करीब आ जाएँ। तो अल्लाह के नबी ने मदीना छोड़े जाने को नापसंद किया और फरमाया, ऐ बनी सलमा, क्या तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? तो वो लोग वहीं रह गए। क्या मतलब था कि रहो मदीना में और चल के वहाँ तक आ सको तो आ जाओ, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जों को बुलंद करे। तो अब यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह ने जिस शहर को अपने दीन के काम के लिए चुना उसमें कितनी खूबियाँ थी। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह इंसानों का मुकद्दर होता है ना, इस तरह जगहों का भी मुकद्दर होता है, इलाकों का मुकद्दर होता है, ज़मीन के टुकड़ों का नसीब होता है। कुछ चीज़ें कुछ पहले चर्च हैं। आपको पता है कि हमने लंदन में जो अभी दौरे कुरान किया, तो मैंने बहुत लोगों से बकसरत से बात सुनी, और एक दिन वो जो खुद माशाल्लाह जो उस जगह के ओनर हैं उनकी वाइफ भी आती थी, तो उनको भी मैंने ये बात कहते सुना कि अल्लाह ने इस जगह का मुकद्दर कैसे बदला है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते कि ये जो जगह है, यहाँ पहले नाइट क्लब था कुछ साल पहले, और आपको पता है क्या क्या खुराफात होंगी, और इतनी खराबियाँ थी कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। फिर कितने साल वो वीरान रहा, उस जगह को किसी ने आबाद नहीं किया। होते हवाते अब आज वो एक मुसलमान के ओनर में आया, अब वहाँ उनके जो भी अपने कारोबार का सिलसिला है। उनकी जो बात दोहरा रही है, वो कहती थी कि आज मैं सोचती हूँ कि अल्लाह इस जगह से कुरान पेश कर रहा है। तो ये नसीब होते हैं, अपने घरों का नसीब खुद पूछें। आप ओस्लो शहर में रहते हैं, अपने अपने इलाकों का नसीब देखें, अपनी अपनी गली मोहल्ले, अपने अपने घरों का नसीब देखें। एक जगह मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक सिस्टर थी, अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है। कहती है हमारे 20-25 घर हैं, उंगली रखें किस घर पे रखते हैं आप, आ जाएं हम उसको दीन के लिए अभी वक्फ करने को तैयार हैं। नसीब की बातें होती हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, हम फिर भी रोते धोते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता तो भी हमारा ये हाल होता है। तो मक्का से उठाकर मदीना ले जाए, क्योंकि मदीना वो कोई बड़ी मशहूर जगह नहीं थी। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि पहले क्या था और आज अल्लाह ने उसको क्या रखा। अब हुआ क्या कि जब सारे चले गए, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, चंद गिनती के लोग अब मौजूद हैं, मक्का वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती हार थी। याद रखिए कि वो कहते हैं ना कि अब वैसे तो गुस्सा कोई नहीं, लेकिन अपनी हार का बदला लेना चाहते। कुरैश गुस्से में पेचोताप खा रहे थे। दारुल नदवा नाम की एक इनकी बिल्डिंग थी, जैसे अल्लाह के नबी दारुल अरकम में सहाबा के साथ बैठ के अपनी मीटिंग्स करते थे, तो ये दारुल नदवा में गोया कि उस वक्त का पार्लियामेंट हाउस था। ये सब वहाँ जमा होना चाहे कि देखें कि ये कर क्या रहे हैं। उनको लगा कि ये तो अलग हो गया, इनको तो जगह भी मिल गई और ख़बरें तो आ रही थी। पहले हबशा में मुसलमानों को अच्छी जगह मिल गई, अब इनको मदीना में हुआ। खौफ क्या आ गया कि ये क्या हुआ, इनका दीन, इनकी तिजारत, इनका तो सब कुछ अच्छा हो गया, और जितने ये स्ट्रांग होंगे इनको लगा कि हमारे लिए इतना ख़तरा है। चुनाचे एक बहुत ही ज़्यादा बुरी, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया की बदतरीन मीटिंग हुई। जुमेरात का दिन था, 26/26 सफ़र था, 14/14 नबवी थी। उन्होंने सबने जमा होकर दारुल नदवा में इस मसले का हल सोचा कि देखो ये साथी तो चले गए हैं ना मदीना में, तो जो सबको जमा करने वाला शख्स है वो तो भी मक्का में ही है ना, और अब इसके डिफेंडर्स भी इतने इधर नहीं रह गए, क्यों ना हम इसको यहीं ख़त्म कर दें। समझ रहे हैं, यदि मुखलिसीन दूर हो गए हम इसकी जान ले लेते हैं। बड़े बड़े नुमायाँ लोग थे जो मक्का के सरदारान, वो इसमें जमा हुए। जब ये जमा हो रहे थे तो इबलीस को इससे अच्छी महफिल क्या लगेगी कि जिसमें नबी की जान लेने का इरादा किया जाए। ये एक नजदी शेख के रूप में, एक बड़ी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में आया, कहने लगा यहाँ क्या हो रहा है? कहा कि बस यहाँ पे कुछ एक मीटिंग है। कहा अगर तुम चाहो तो मैं भी बैठ जाऊँ। दुनिया देखा हुआ हूँ, तो मैं अपने तजुर्बात से थोड़ा सा फ़ायदा दूँ। उन्होंने कहा अच्छा चले ज़रूर बैठ जाए। कहा ठीक है। अब होता क्या था कि वो सब मुख्तलिफ राय देते थे, मैं नामों में उलझाए बगैर आपको सिर्फ इसको गो थ्रू करा देती हूँ। इनके सरदारों में एक ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस शख्स को अपनी ज़मीन से निकाल दें, यानी इसको खुद ही मक्का से निकाल दें, और हम अपना मामला दुरुस्त करें, हमारा शहर इससे पाक हो जाएगा, ना हमारा इससे कोई वास्ता रहा ना कुछ, यानी मीन के बस इसको अपने मुल्क से निकाल दो, इसका वीज़ा कैंसिल कर दो और इसको दोबारा आने से रोक लो, डिपोर्ट कर दो आज की नज़र में। अच्छा, दूसरों ने कहा वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा मशवरा है, ये वेरी गुड। लेकिन ये नजदी शेख साहब जो असल में इबलीस थे कहने लगे, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम देखते नहीं हो कि इसकी बात कितनी उम्दा है और इसके बोल कितने मीठे हैं, वो किस तरह लोगों का दिल जीत लेता है। बस जब वो यहाँ से निकलेगा, कुछ ताज्जुब नहीं कि वो अरब के किसी कबीले के यहाँ ठहरे और लोग इसके गिर्द इकट्ठा हो जाएं, फिर वो इसकी मदद से तुम्हारे इलाके ही में तुम पर चढ़ाए और तुम्हारे साथ जैसा सलूक चाहे करे, कोई और सोचो। देखिए अब इबलीस अक्लमंद है कि नहीं, अक्लमंद था। कहने लगा अभी तो ये मक्का में बैठा हुआ है थोड़े से लोगों में, खुद अपने हाथ से इसको बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता था ना कि अल्लाह के नबी भी हिजरत के मुंतजर हैं। तो उसने कहा कि अगर ये बाहर चला गया तो ये तो अपनी अच्छी बातों से बाहर वालों को राम करेगा, तो कहीं हमारे लिए फिर एक बाहर खतरा ना हो, ये ना करो। एक और शख्स अबुल बख्तरी था, कहने लगा अच्छा फिर ऐसा करते हैं, इसको कैद कर देते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ तक कि इसका भी वही अंजाम हो जो इससे पहले दूसरे शोरा का हुआ। अरब लोग शायरों को बाज़ दफ़ा इस बात पे कि वो हमारी हज्व करते हैं या हमारे खिलाफ बातें करते हैं कैद कर देते थे, और वो बेचारे कैद में गल सड़ के मर जाते थे। कहा इसके साथ भी यही करो। अब इस पे भी लोगों ने कहा ये भी अच्छा, चलो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन नज़दीक शेख साहब बोले कि नहीं वल्लाही, अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया तो ये बात इसके साथियों तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और वो अपने बाप बेटों से ज़्यादा इसको मानते हैं, और ज़ाहिर है कि वो हम पे हमला करेंगे और तुम्हारे कब्ज़े से निकाल कर ले जाएंगे और इसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें मغلوب कर देंगे। उनको ये पता था वैसे कि अल्लाह के नबी के साथी मुखलिस बहुत है, वो अल्लाह के नबी के ऊपर किसी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई एक लफ्ज़ से भी उनकी हिमायत नहीं करेगा कि हाँ जो आप कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। और ये यकीन किन साथियों पे होता है, जिनके दिल हकीकत में अल्लाह की याद में मगन होते हैं। कुफार इस बात की गवाही दे रहे हैं, तो आप देखिए कि सहाबा के लिए इससे बड़ा फिर क्रेडिट और क्या होगा। खैर ये भी ख़त्म। बिल आखिर सरदार तागूत अकबर अबू जहल खड़ा हुआ, कहने लगा मेरी एक राय है और इतनी अच्छी है जिस तक तुम पहुंचे ही नहीं हो, और वो क्या है कि हम में से हर कबीले का एक शख्स आए, समझिए कि कबीलों में तो बटे ही हुए थे, एक 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 कर दे, सबका एक एक नवान, सबके हाथों में तलवारें हों, सब मिल के जाकर इस शख्स पर तलवार चलाएं, मर जाएगा। अब जब ये मरेगा तो इसकी बदले के लिए आएंगे ना इसके घर वाले दियत लेने या बदला, तो अब कहेंगे कि इतनों ने मारा है, तो अब इतनों के साथ दुश्मनी तो मोल नहीं लेंगे, फिर क्या कहेंगे हम, चलो भी इसकी ब्लड मनी यानी दियत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, और हम इतने कबीलों वाले थोड़े थोड़े पैसे डाल के इसका दे देंगे फिदिया, दैट्स इट। ये राय सुन के नजदीद जेने का ये है बात करने की, बाकी सारी बातें अधूरी, ये बात सबसे अच्छी। और लिहाजा इसमें आप देखिए कि इनका ये फैसला हुआ, इस बात में ये उठे और सोचा कि अब यही करेंगे। अब आप सोचिए कि देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि इंसानों के दिमाग के मुख्तलिफ लेवल होते हैं। ठीक है अबू जहल मुसलमान नहीं था, लेकिन अपने लोगों के लिए अक्लमंद बहुत था, उसकी राय सबसे स्ट्रांग थी। उन्होंने कुछ और सोचा, वो उनकी तदबीरें थी, उनकी बातें थी, अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। अब आगे हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी की हिजरत किन हालात में हुई और कुरैश को अल्लाह ताला ने कैसे मान किया।